शांति। आज हमारे बीच आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश भाई जी हैं। हम आपका इस भट्टी में एक हाथ की ताली से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं समझती हूं कि जब भी आप बाबा के सीजन में आते होंगे तो हमेशा आपको अवश्य सुनते होंगे। कई विषय तो इनके ऐसे हैं जो बहुत ही फिजिकल या मानसिक स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर बहुत ही अच्छे विषय हैं। कैसे उन्होंने बाबा के ज्ञान को और मेडिकल जो नॉलेज है उन दोनों को कंबाइन करके बहुत ही अच्छे कई विषय लोगों के सामने रखे, इवन बेकेस के भी सामने रखे, जिससे बाबा का ज्ञान लोगों को बहुत स्पष्ट होने लगा। न केवल इतना, लेकिन आपने हार्ट की डिजीजेज में पॉजिटिव लाइफस्टाइल, उस पर सारा रिसर्च करके किस तरह से कितने ऐसे पेशेंट्स हैं। मेरे पास ही मैं समझती हूँ 3 ऐसे भाई हैं जिन्होंने, जिनको हार्ट का काफी तकलीफ था और कैसे उन्होंने ये सारा एडॉप्ट करके अभी तक भी उन्होंने एक बार भी सर्जरी नहीं कराई है। तो किस तरह से बाबा के ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में उतारा, उसको समझा और औरों को भी उसी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, ये भी एक बहुत बड़ी आपकी विशेषता है। आप वैसे बहुत उदारचित, बहुत ही विनम्र हैं और बड़ी विनम्रता से आपको कुछ भी यदि कहा जाए तो आप सहज ही स्वीकार करते हैं। आपको ये सब कार्य करते हुए, मधुबन में रहते हुए लगभग मैं समझती हूँ 20वां साल है और आप ये कार्य कर रहे हैं। हर वर्ष कई ग्रुप्स कैट के आते हैं और यहाँ से लाभ लेकर जाते हैं, जिसमें नॉन बीकेस भी होते हैं और फिर वो जाके स्टूडेंट्स भी बन जाते हैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर सतीश भाई जी, आज आपके सामने एक विषय है, दिव्य गुणों की धारणा, जो प्रवृत्ति में रहते बहुत जरूरी है। और चाहे कुमार हो, कुमारी हो, चाहे युगल रूप से ज्ञान में चलते हो या सभी ज्ञान में ना चलते हो, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत जरूरी है। तो इस विषय को आज वो स्पष्ट करेंगे, आदरणीय भ्राता सतीश भाई जी।
ओम शांति। आप सभी को कैसा लगा यहाँ पर आके भट्टी में? सभी को अच्छा लगा? बहुत अच्छा। बाबा ने अभी हम बच्चों को दोबारा चांस दिया है। आदि में बाबा के अव्यक्त होने के बाद भट्टियां यहाँ हुआ करती थी और उसके बाद फिर अब फिर लगता है अंत का समय है, फिर दोबारा भट्टियां मधुबन में होनी शुरू हुई हैं। तो बाबा की कर्म भूमि में ये बहुत ही बढ़िया चांस है। आप कल जाने वाले ना, बाकी आज की रात और कल सुबह और पावरफुल भट्टी कर लेना। परसों जाने का है तो कल तक और भट्टी करके और स्ट्रांग हो जाना है, क्योंकि ये अनुभव हमेशा, जीवन के अनुभव जो होते हैं ना, हमेशा स्पेशली मधुबन के किए हुए अनुभव, वो हमेशा साथ रहते हैं। पहले मैं दिल्ली से आता था तो मुझे याद है जब हम दिल्ली में रहते थे तो लगभग मेरा ये था कि मैंने इनको ओपन कहा हुआ था कि आप जब भी आपको आवश्यकता मुझे बुला सकते हैं। तो मैं हर दो महीने में लगभग 5-6 दिन के लिए, हफ्ते के लिए यहाँ पर आ जाता था मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा के लिए। और मेरा ये था, दिल्ली में रहते हुए मेरा अमृत वेला रोज बाबा कमरे में होता था। ये बाबा कमरा ना यहाँ पर, ऐसा कर सकते हैं? दिल्ली में रहते यहाँ आ सकते हैं? आ सकते हैं? मुरली में रोज ओम शांति भवन में सुनता था, दिल्ली में रहता शरीर से दिल्ली में, किंतु मुरली कहाँ सुनता था? ओम शांति भवन में। और तन मेरा दिल्ली में था और मन कहाँ था? मधुबन में, है ना, मधुबन में। सारा दिन जैसे मधुबन की गलियां, है ना, वही याद आनी, वहीं पर ही बैठ के खाना खाना, वहीं पर हर जैसे एक फीलिंग। तो मधुबन की एक एक क्षण को आप अपने अंदर बसा लो तो आप देखेंगे आपका जीवन कैसे खुशबू से भर जाएगा। और वहां रहते भी, हिसार से आए ना सभी, हिसार से आए, तो हिसार में रहते हुए भी आपको ऐसा लगेगा जैसे मधुबन में रह रहे हैं ना। चलिए, आज का टॉपिक है दिव्य गुणों की धारणा। इस टॉपिक पर हम मनन चिंतन करने से पहले, रूढ़ ध्यान करने से पहले, अपने मन बुद्धि को एक बार दोबारा से एकाग्र कर लीजिए। मन में दूसरे विचार, सिर्फ एक बाबा और बाबा और बाबा के महावाक्य, यह समझिए मैं आत्मा और शिव बाबा हूं। मुझ आत्मा से साथ एनर्जी कहो, गुण कहो, सारे शरीर में जा रहे हैं। परमात्मा सात गुणों का सागर है, मुझसे उसमें उनमें से मुझे आत्मा में आ रहे हैं, मुझसे सारे बॉडी में जा रहे हैं। चलिए इसी 5-2 मिनट इसी अनुभव में टिक जाओ, बाकी सब अनुभव, बाकी सब बातें एकदम शट ऑफ कर दो। ओम शांति। दिव्य गुणों की धारणा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 4 मुख्य सब्जेक्ट हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा। किस चीज की धारणा? दिव्य गुणों की धारणा, है ना, और चौथा है सेवा। अगर ये 4 सब्जेक्ट हम देखें तो सीक्वेंस में है और आपस में ओतप्रोत भी है। ज्ञान है रंग, ज्ञान क्या है? रंग। और योग क्या है? रूप, है ना, जो रंग से जो रूप में परिवर्तन आता है। और दिव्य गुणों की धारणा क्या है? खुशबू। ज्ञान और योग जो हम करते हैं उससे जो हमारे अंदर खुशबू पैदा होती है, जो दूसरों को सुख देती है, वो है दैवी गुण। मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मैं बहुत योग लगाता हूं, किंतु तो उससे दूसरों को क्या फायदा? दूसरों को क्या फायदा? फायदा होता है कोई इससे? तो वो जो मेरे अंदर जो रूहानियत प्रैक्टिकल मेरे कर्मों में आती है वो कहलाती दिव्य गुण, डिवाइन क्वालिटीज, है ना, दैवी गुणों की। उसको हम थोड़ा गहराई में जाएंगे कैसे वो दैवी गुण हमारे जीवन में आए। कई बार हम बहुत ज्ञान भी करते हैं, मुरली भी रोज सुनते हैं, योग भी बहुत करते हैं, क्यों दैवी गुण धारण नहीं होते फिर भी ना? क्यों नहीं होते वो दैवी गुण धारण? और फिर जब दैवी गुण धारण होते थे ऑटोमेटिकली हमसे सेवा होती रहती है, 24 आवर सेवा होती है ना, हमें ये सेवा करने की आवश्यकता नहीं होती, कि तो ऑटोमेटिक हमारे हर चलन से, हर कर्म से सेवा होती है। बाबा कहते हैं ना, अभी कहता है बाबा कि बच्चे अब चेहरे और चलन से सेवा करने का समय है, अब बोलने का समय नहीं है, अभी वाणी द्वारा सेवा करने का समय नहीं है। तो चेहरा और चलन, चेहरा क्या है हमारा? ये चेहरा, इस चेहरे द्वारा सेवा करते हैं। कौन सा चेहरा? क्या कह रहे? रूहानी चेहरा। हाँ, चेहरा माना मन, हमारा मन, मन के द्वारा सेवा, मतलब मनसा सेवा, अर्थात हमारा मन जो कुछ हमारे मन में होता है हमारे चेहरे पर दिखाई देता है, इस चेहरे पर दिखाई देता है। तो वो हमारा ऐसे कैसे वो मन हमारा एकदम स्वच्छ बन जाए, शुद्ध बन जाए, पावन सत्व प्रधान बन जाए, तो उस तब इस चेहरे के द्वारा वाइब्रेशन निकलते हैं, तब इस दृष्टि से जो दृष्टि लोगों को महसूस होती है उनके द्वारा वो महसूसता करते हैं, वो उसके द्वारा सेवा होती है। और चलन माना कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं उसके द्वारा सेवा होती है। चेहरा का मतलब मन और चलन माना कर्म, राइट। तो दैवी गुणों की धारणा कैसे हमारे जीवन में आ जाए और उसका क्या विधि है कि हमारा उसका हम उसका स्वरूप बन जाए, क्योंकि अंतिम स्वरूप हमारा क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। देवता का प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है? उसमें सबसे पहली बात क्या होती है, सर्वगुण संपन्न, है ना, सर्वगुण संपन्न, कौन से गुण, दैवी गुण संपन्न, है ना, मैं सर्व गुणों से भरपूर एकदम 100% और सर्व एक भी कम नहीं, सारे दैवी गुणों से भरपूर, ये देवता की पहली निशानी है, ठीक बात है। और 16 कला संपूर्ण, उसमें भी 16 कला, 16 कला माने एकदम फुल मून, जरा से कहीं से भी किनारी कटी नहीं, उसमें भी फुल 16 डिग्री, 16 आना है ना, 14 आना नहीं, और फिर संपूर्ण उसके आधार पे संपूर्ण निर्विकारी है ना, जिसमें जरा भी किसी विकार का अंश भी नहीं, जरा जिसमें काम विकार का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, आलस्य का, उसके बहुत सारे बाल बच्चे, उनका भी किसी का भी अंश मात्र भी ना हो। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, उस गुणों के आधार पे, मतलब गुण जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का आधार, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का आधार भी क्या, गुण, तो वो जो जितने हमारे अंदर सर्व गुणों की भरपूरता होगी उसके आधार पर हर चीज की मर्यादा, सोचने की मर्यादा, देखने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, खाने की मर्यादा, सुनने की मर्यादा, कर्म करने की मर्यादा, सोने की मर्यादा, उठने की मर्यादा, बड़ों से व्यवहार करने की मर्यादा, है ना, हर चीज की मर्यादा। मर्यादा में पुरुष उत्तम, एकदम उत्तम, उत्तम से उत्तम पुरुष, हाईएस्ट डिग्री, और फिर अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा माना कोई प्रकार की हिंसा ना हो, एकदम जरा भी किसी प्रकार, किसी प्रकार की मनसा वाचा करना माना ना, किसी विकार का कोई काम विकार की हिंसा नहीं, क्रोध की हिंसा नहीं। जितना जितना भी हम काम विकार से मुक्त होते जाते उतना उतना हमारा लाइट का ताज हमारे सिर पे आता जाता है। ये पहली निशानी है हम ब्राह्मणों की, अहिंसा परमो धर्म। अभी जितना हम अहिंसा का अभी प्रैक्टिस करते हैं उतना हम अहिंसा परमो धर्म बनते जाते हैं। अगर ब्राह्मण के रूप में देखें तो अहिंसा का, मैं तो इसका यही मतलब निकाल के चलता हूं हमेशा, जितना जितना हम काम आना, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक इस विकार पर विजय प्राप्त करते जाते हैं, हमारा लाइट का ताज बड़ा होता जाता है। और जैसे जितना जितना हम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांच विकार जो दूसरे हैं ना, ये चार विकार जो बाकी पांच में से चार बचते हैं, जितना इन पर विजय प्राप्त करते जाते हैं उतना बड़ा हमारा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाबा हमें देता जाता है। अगर थोड़ा सा भी हमारे अंदर क्रोध है, थोड़ा सा किसी बात का लोभ है, इवन नाम मान शान का भी लोभ है, मेरा थोड़ा नाम हो जाए, मुझे थोड़ी मान मिले, शान मिले, लोग मुझे पूछें, तो भी मुझे बाबा जिम्मेवारी का ताज नहीं देगा, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज नहीं मिलेगा। जरा सा भी मोह है किसी से, कोई मुझे अच्छा लगता है, किसी के प्रति लगाव है, झुकाव है, किसी के प्रभाव में हूं, तो बाबा मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज नहीं देगा। और थोड़ा सा भी अहंकार है, ज्ञान का, बुद्धि का, स्थूल प्राप्तियों का या सूक्ष्म प्राप्तियों का भी, तो बाबा मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज नहीं देगा, क्योंकि विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज के आधार पर ही स्वर्ण रतन चरित ताज मिलता है। जितना जितना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज मैं लेता हूं उतना ही फिर मुझे भविष्य में क्या होगा, मेरा उतना ही रतन जड़ित ताज मुझे प्राप्त होगा, राइट। तो ये हमारा दैवी गुणों की धारणा का संपन्न और संपूर्ण स्वरूप क्या है, देवी देवता स्वरूप, ठीक है। तो आज हम उसी टॉपिक पर हम चलते हैं, गहराई से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिसे आपको आज अभी हमने डिस्कस भी किया कि ज्ञान और योग के आधार पर फिर तीसरी बात जो सब्जेक्ट है वो दैवी गुणों की धारणा हमें होती है। इसके लिए थोड़ा सा हम समझें कि किस तरह से हमारे दैवी गुण आएंगे, किस तरह से दैवी गुणों की धारणा हम कर पाएंगे जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप। पहले मैं आपको नाम बता दूं कुछ दैवी गुणों के जो बहुत जरूरी हैं ताकि उनको आप समझ सकें, और फिर कैसे धारण करना उसके फिर आगे आप बात करेंगे। पहला जो दैवी गुण है वो सत्यता है, और बाबा ने इस सत्यता का अर्थ मुरली में बताया, स्पेशली 1977 और 1975-74 मुरली की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे से गहराई से सत्यता की डेफिनेशन दी है। सत्यता का मतलब कुछ सच्चे सच्चे बोलने को सत्यता नहीं कहते, सत्यता माना अपने सत्य स्वरूप में टिकना, मेरा सत्य, मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, इसमें टिक करके हर कार्य करना। बाबा ने जो एक्यूरेट डेफिनेशन दी है मुरली में, वो कहा है अपने अनादि पावन सत्व प्रधान स्वरूप, अपने अनादि पावन सत्व, मतलब जब हम परम धाम में हैं, बाबा के नजदीक हैं परम धाम में, तो वो जो मेरा अनादि पावन सत्व प्रधान, परम धाम में जो मेरा पावन सत्व प्रधान स्वरूप है, अपने अनादि पावन सत्व प्रधान स्वरूप और आदि, आदि में मेरा पावन सत्व प्रधान स्वरूप, आदि में क्या है मेरा वही वाला देवी देवता वाला स्वरूप है ना, एकदम लाइट का ताज, रतन जड़ित ताज, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधम, वो वाला मेरा संपन्न स्वरूप है ना। तो अपने अपने अनादि आदि पावन सत्व प्रधान स्वरूप में स्थित होकर हर संकल्प बोल और कर्म करना, अपना कोई भी हम विचार भी करें, हम कोई बोल बोलें, हम कोई कर्म करें या संबंध संपर्क में आए, संबंध माना परिवार में, हम जिसके साथ भी हमारे जो भी जहां भी हम रहते हैं, हमारे युगल हैं, हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सास ससुर हैं, पड़ोसी हैं, मत संबंध, तो संबंध हो गए घर में, संबंध हो गए और संपर्क पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, वो संपर्क हो गए ना। तो अपने अनादि आदि पावन सत्व प्रधान स्थिति में स्थित होकर किसी भी संकल्प बोल व कर्म व संबंध संपर्क में आना व सोपन में आना, मतलब सोपन भी हमें किस तरह से लेना है, हमेशा ये हमेशा याद रहे मेरा मैं अनादि, मेरा अनादि पावन सत्व प्रधान स्वरूप क्या है और आदि पावन सत्व प्रधान स्वरूप क्या है। अर्थात सोने से पहले भी हमें इसी अवेयरनेस में, इसी कॉन्शियसनेस में सोना है, ठीक है। अगर डेफिनेशन में जाए तो हमें सारा कुछ समझ आना, कितना हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा सोचना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प बोल व कर्म से भी टच ना करना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प बोल व कर्म से भी टच ना करना, यह है सत्यता की डेफिनेशन, ठीक है। अगर इस डेफिनेशन पे आप सोचो, मैं तो कई बार मैं जब योग करता हूं ना, कई बार दैवगुणों को भी योग करता रहता हूं, बस मेरे 45 मिनट इसी में पूरे हो जाते हैं, इसी अनुभूति में टिक जाना, अनुभव कर रहे हैं आप अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई, याद हो गई सभी को, याद हो गई, मैं दोबारा से बताता हूं क्योंकि ये इसेंस है हमारी, ब्राह्मण जीवन का इसेंस है ये, अपने अनादि आदि पावन सत्व प्रधान स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प बोल व बोल कर्म व संबंध संपर्क में आना व स्वपन में आना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प व बोल व कर्म से भी टच ना करना, यह है सत्यता, ठीक है। तो पहला दैवी गुण, दूसरा दैवी गुण है पवित्रता। आज की मुरली सुनी ना, आज की मुरली में क्या था, आज की मुरली प्रश्न तो याद है ना सभी को, है ना, पवित्रता है ना, सबसे बड़ी बात जो है वो पवित्रता है ना, पवित्र पवित्र आत्मा का ही बाबा से योग लग सकता है, पवित्रता ही बाबा से नजदीक का कशिश का अनुभव कराती है ना, बाबा खींचता है चुंबक के माफिक खींचता है। तो पवित्रता माने शुद्धता, एकदम शुद्धता, जो मेरा रियल ओरिजिनल स्वरूप है उसी में टिके रहना, आत्मा उसका स्वरूप एकदम शुद्ध हो जाए, पवित्र बन जाए, परम पवित्र स्थिति की अनुभूति करे, और जो उसकी तीन शक्तियां हैं मन बुद्धि संस्कार, उसमें जरा भी रावण या माया का अंश ना हो, एकदम शुद्ध निखालिस, निखालिस सिर्फ मैं एक अनादि आदि पावन सत्व प्रधान आत्मा हूं, बस चलते फिरते उठते बैठते मैं हूं ही ओरिजिनल पावन सत्व प्रधान आत्मा। ये जो द्वापर से आया ये तो बाद में बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद आया, ये मेरा नहीं है, ये मेरा ये पराया रावण का है, जो भी मेरे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आए वो मेरा संस्कार नहीं था, वो मेरा नहीं था, पराया था, मैं तो हूं ही पवित्र एकदम शुद्ध, मुझे आत्मा एकदम पवित्र हीरा हूं, मुझे सारे पवित्र हीरे से सारे शरीर में सारी मतलब रोम रोम में बस पवित्रता के वाइब्रेशन भरे, पवित्रता की खुशबू सारी बॉडी में जाए और मुझसे निकल करके दूर दूर तक जा रही है, बस इसी अनुभूति में चलते फिरते अभ्यास कर। देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहां मैं बता दूं, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हमारी चार मुख्य मर्यादाएं हैं, आप पता ना ब्राह्मणों के चार नियम हैं और चार मर्यादाएं हैं। चार नियम कौन से हैं आप सभी जानते हैं, बोलो, अभी तो आपने बहुत सारी क्लासेस अनुभव भी बहुत सारे किए होंगे ना, बोलो। हाँ, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, ठीक है। अमृत वेला 4 से 4:45 है ना, मतलब ये 4 से 4:45 पावरफुल अमृत वेला, अमृत पावरफुल माना, पावरफुल माना एकदम बस बाबा और मैं, तीसरा कुछ भी नहीं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा की याद में मगन हो जाए, बस सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में चले गए और फिर बीच बीच में परमधाम में चले गए, फिर वापस बाबा की गोद में आ गए, फिर परमधाम चले गए, फिर बाबा की गोद में आ गए, फिर परमधाम चले गए, 45 मिनट इसी स्थिति का अनुभव होता रहे, कभी आकारी कभी निराकारी, कभी आकारी कभी निराकारी, ठीक है। तो वो स्थिति का अनुभव, पावरफुल अमृत वेला, जागती ज्योत, झटके वाला योग नहीं, झटके वाला योग भी लगाते ना लोग, चलो मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करता, पर एकदम पावरफुल झाटकू योग, झाटकू माना उल्टा, योग का उल्टा क्या है, योग का उल्टा करो क्या बना, गयो माना 45 मिनट के लिए इस साकारी दुनिया से गयो, है ना, नहीं मतलब 45 मिनट जरा भी देह का भान ना हो, देह देह की दुनिया का भान नहीं होना चाहिए। तो सच्चा ब्राह्मण माना जो कभी भी अमृत वेला मिस ना करे, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, है ना, हॉस्पिटल के बेड पे हो, आखिरी समय आ गया हो, तो भी अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सच्चा ब्राह्मण, दूसरा नियम क्या है, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे, इंटरनेट पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, क्लास में आके, है ना, जो बाबा का स्कूल है, विश्वविद्यालय, उसमें बैठ कर, बाबा की जब हम मुरली पढ़ते हैं ना उसमें पालना नहीं मिलती है, आप मुरली पढ़ लीजिए उसमें पालना नहीं, किंतु तो जो जब बाबा की मुरली जब सेंटर में आके सुनते हैं वहां वो वायुमंडल है, वहां जो भी बहन या भाई बैठ के मुरली सुनाते हैं वो बाबा उस आत्मा के अंदर प्रवेश करके उसके द्वारा आपको वाइब्रेशन भी दे रहा है, पावर भी दे रहा होता है, ताकि वो मुरली जीवन में धारण हो जाए। फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने देखा ना हमारा रेडियो होता है ना, रेडियो, रेडियो जो होता है, रेडियो को, रेडियो के बाहर ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, बीबीसी, सभी के वाइब्रेशन होते हैं ना, सभी के साउंड्स होती हैं, किंतु कौन सी साउंड अंदर जाती है, कौन सी साउंड अंदर जाती है, रेडियो मधुबन भी उसके अंदर है, कौन सी आवाज अंदर जाएगी, कौन सी आवाज बोलेगा, जो फ्रीक्वेंसी आप सेट करेंगे, है ना, तो ये मुरली कब हमारे अंदर जाएगी। देखो कई बार होता है ना, मुरली सुन लेते हैं और मुरली सुन के बाहर आओ तो क्या होता है, पूछे ना बाबा ने आज क्या कहा था, पता नहीं याद नहीं आ रहा है ना क्या कहा था, मैं दिमाग पे जोर डालो याद आता है क्या, फिर हाँ कोई कहे ना हाँ ये कहा था, हाँ यही कहा था, यही कहा था, नहीं ऐसे बोलते ना, हमें याद नहीं रहता, रहता है यार। अच्छा बताओ जरा मीठे बच्चे क्या था आज का, बताओ चलो, हाँ विघन स्वरूप, विघन रूप नहीं बनना, बहुत अच्छा। तो मतलब ये मुरली एकदम यूं छप जाए, पहले पेज पे क्या था, ऊपर के पेज में क्या था, मिड पेज में क्या था, नीचे की लाइनों में क्या था, दूसरे पेज पे क्या था, बीच में क्या था, तीसरे आखिरी में क्या था, कौन से पैराग्राफ में क्या चीज थी, वो भी छप जाए आंखों में ना, ऐसे छपी हुई हूं जैसे मेमोरी में छप जाए, स्मृति में रिकॉर्ड हो जाए, ऐसी कोई लाइन हो पूछे हाँ ये लाइन कहां से है, हाँ चौथे पेज की तीसरी लाइन है ये, बांदेलियों की बात थी, बाबा ने पूरा आधा पेज बाबा ने बांदेलियों के ऊपर चलाया, है ना, एक एक बात समझ जाए कि तीसरे पेज पे आखिरी 4-5 लाइनों में क्या बात थी, बाबा ने क्या कहा था, छप जाए मुरली, है ना, वो तभी हो सकता है। देखो शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी जीरो है, शिव बाबा कोई संकल्प नहीं चलते, ड्रामा अनुसार जो कुछ होना होता है बाबा ऑटोमेटिक ड्रामा करा लेता है, ब्रह्मा बाबा को एक ही संकल्प है, मेरे बच्चे सब संपन्न और संपूर्ण बन जाए, बाबा को और कोई संकल्प है ही नहीं। तो जब मेरे दो संकल्प होंगे तभी मेरा कनेक्शन बाबा से लग सकता है, तभी मेरे अंदर मुरली रिकॉर्ड हो सकती है। सिर्फ मेरे अंदर क्या होना चाहिए, मैं और मेरा बाबा बस, तीसरा जरा भी कोई तीसरा संकल्प आएगा तो मुरली मेरे अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी, स्मृति में रिकॉर्ड नहीं होगी, और रिकॉर्ड नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी जेब में 500 रुपए पड़े हुए हैं कागजों के बीच में, आपको याद ही नहीं है और आपको प्यास लग रही है बहुत जोर से, पेट में भूख भी लगी हुई है, तो क्या करोगे आप कहोगे मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं, पानी पीने के पैसे नहीं है, नहीं है क्या? पैसे हैं कि नहीं? 500 का नोट पड़ा हुआ ना जेब में, कागजों के बीच में, आपको याद ही नहीं है। तो आप प्यासे मर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं? भूख लगी, भूख बहुत जोर से लगी, आप खाने की सोचते मैं क्या करूं, अभी पैसे ही नहीं है, किससे मांगू पैसे, अनजान शहर है ना। तो स्मृति नहीं है तो क्या काम के हैं पैसे? वो काम के हैं क्या? ऐसे ही मुरली तो आपने सुनी, किंतु जब आपको दिन में परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं, और आपको स्मृति है ही नहीं बाबा ने आज क्या कहा था, बाबा का आज मेरे लिए क्या वरदान था, बाबा की डायरेक्शन क्या थी आज, तो क्या होगा? क्या होगा? आपके काम की है मुरली सुनी, सुबह की मुरली काम आएगी? आप तो फेल हो जाओगे उसके सामने, उस परिस्थिति में तो ना, नहीं फेल हो गए, नहीं हो गए? तो ये ध्यान रखना है मुरली की स्थिति में सुननी है। जब बाबा के हम वहां बैठते हैं क्लास में आके बैठते हैं, तो वो हमारी वो वाइब्रेशंस, वो वायुमंडल ऐसा होता है, उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी अपने आप दो पे पहुंच जाती है, बस बाबा और मैं, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसमें मुरली हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। और तीसरा है फिर सारा दिन कर्मयोगी बनकर कर्म करना, तीसरा नियम, हर कर्म करते कर्म और योग का बैलेंस रहे, मतलब बाबा की याद बनी रहे, अटेंशन रहे सारा दिन, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। और दिन में कम से कम है ना 21 जन्म जाना ना सत्ययुग त्रेता में, तो सुबह तो मुरली पढ़ी हम लोग, सुबह सुबह अमृत वेला योग करते ही मुरली पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर मुरली सुनते हैं, और फिर वॉकिंग करते करते फिर मुरली रिवाइज करते हैं, है ना, 45 मिनट में मुरली रिवाइज होती है, फिर नाश्ता करने के बाद फिर मुरली निकाल लेते हैं जेब से, है ना, टेबल पे खाना, नाश्ता करने के पहले फिर मुरली पढ़ लेते हैं, मुख्य एटलीस्ट मुख्य हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, वरदान स्लोगन रिवाइज कर लेते हैं, फिर कार में बैठते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, फिर मुरली रिवाइज कर लेते हैं, है ना, 5-7 मिनट लगते हैं पहुंचने में हॉस्पिटल, तो मुख्य मुख्य बात फिर देख लेते हैं, है ना, फिर बीच बीच में जैसे ही मौका मिलता है, पेशेंट बीच में टाइम मिलता है, फिर निकाल लेते हैं। ये चिड़ी मुरली क्या है? मुरली क्या है बताओ? बाबा का लव लेटर है ना, तो लव लेटर कहाँ रखते हैं? प्रेम पत्र कहाँ रखते हैं? दिल के पास रखते हैं ना, और किसी को दिखा के नहीं पढ़ते हैं, चुपचाप यूं निकालते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर जेब में छुपा देते हैं, है ना। ऐसे दिन में कितनी बार, मतलब 20 बार 21 बार 25 बार 50 बार मुरली मन में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बहुत हमारी बुद्धि में बहुत दूसरी चीजें भरी पड़ी थी पहले ना, उसको निकालने के लिए मुरली साबुन है ये वाला, ये मुरली ही निकाल सकती है। ये जो हमारी मुरली में क्या मन मन माना, मन में चार बातें होती है, टीम कहते हैं इंग्लिश में, थॉट्स, मन के चार एस्पेक्ट्स हैं, पार्ट नहीं है, चार एस्पेक्ट्स हैं, थॉट्स, थॉट्स माना विचार संकल्प, ई फॉर इमोशंस माना भावनाएं, ए फॉर एटीट्यूड्स अर्थात वृत्ति दृष्टिकोण नजरिया, है ना, और मैम फॉर मेमोरीज, मेमोरीज माना स्मृति यादें, है ना। तो चारों बातें जो है टीम, मतलब टीम माना मन, तो मुरली जो है 100% पॉजिटिव टीम है। जो नेगेटिव संकल्प हमारे मन में भरे पड़े हैं, नेगेटिव भावनाएं भरी हुई हैं, नेगेटिव एटीट्यूड भरे हुए हैं, नेगेटिव स्मृतियां भरी हुई हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ही हमारे अंदर हमारी संकल्प बढ़ाने का कारण है, संकल्प की स्पीड बढ़ जाती है। और मुरली 100% पॉजिटिव टीम है, वो धीरे धीरे जितना मुरली पढ़ते जाओ, जितना मुरली बाबा रिवाइज करते जाओगे सारा दिन में, उतना आपकी टीम पॉजिटिव होती जाएगी, ठीक है। तो मुरली जो है अगर सारा दिन बस सुबह सुबह बाबा को याद किया, फिर सारा दिन बाबा की मुरली, सुबह सुबह मुरलीधर और सारा दिन मुरली, दिन के लिए सारा दिन मुरली का हिसाब, और सोने के पहले फिर ऑडिट करो अपने आप, ऑडिट माना सारा दिन का पोता मेल चेक कर लो। हम लोग क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं बाबा को, कागज A4 साइज का पेपर होता है, पैड पे लगे होते हैं, मीठे बाबा आज सुबह से लेके देखते हैं सारा दिन में आज क्या गलती हुई, क्या हमने अच्छा किया, क्या गलत किया, एक एक चीज को चेक कर लेते हैं, सुबह से इंस्पेक्शन कर लेते हैं अपना, जांच, जैसे बाबा ने कहा अपनी जांच करो, अंदर को खामी तो नहीं रही, कोई गलत काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं किया। तो सुबह से लेकर शाम तक चेक करते जाते हैं, 4 से 5 अमृत वेला की, 4 से 5 अमृत वेला किया तो उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई थी, 5 से 6 फिर हम स्नान कर रहे थे उसमें दिमाग कहाँ था, बुद्धि कहाँ थी, मन कहाँ जा रहा था, फिर 6 से 7 हम वॕकिंग करते समय कैसा रहा, 7 से 8 मुरली सुनते समय कैसा रहा, फिर 8 से 9 कैसे थे, क्या कर रहे थे, 9 से 10 फिर हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे, उसमें गलती तो नहीं, किसी से गुस्सा तो नहीं किया, किसी से उल्टा सीधा तो नहीं बोला, किसी पेशेंट ने कुछ पूछा मैंने उसको प्यार से जवाब दिया कि नहीं, या किसी को ऐसा तो नहीं, मैंने डांट तो नहीं दिया किसी को, है ना, मर्यादा के खिलाफ तो नहीं गए, ब्राह्मणों का नीति रही कि नहीं, 10 से 11 पेशेंट देखते हुए फिर ऐसा क्या किया, 11 से 12, 12 से एक एक घंटे का मतलब देखते जाते हैं। आपको लगा बहुत समय नहीं लगता है, मुश्किल से हमें तो अभी 3-4 मिनट ही लगते हैं लेटर लिखने में, शुरू शुरू में 10 मिनट लग जाते थे लिखने में, अब धीरे धीरे कुछ लिखने को ज्यादा होता नहीं है, गलतियां ज्यादा होती नहीं है ना, तो इसलिए काम भी कम हो गया ना, सफाई होती जाती, तो फिर साइन नीचे साइन करके बाबा की याद में बैठते और फिर बाबा को, बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर है, क्या नंबर है क्या नंबर है 000 है ना, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0 और सारद में जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0 हो गया ना। तो ये पोता मेल देने का तरीका, बाबा को अपना पूरा हिसाब किताब सच्ची दिल से बता देना, हर चीज सच्चे दिल से बता देना, कुछ छिपाना नहीं। तो ये सारी बात बाबा को, फिर चार्ट भरते हैं और चार्ट भर के फिर मुरली पढ़ते हैं बाबा की वापस, फिर बाबा की मुरली पढ़ के याद करके बाबा की गोद में सो जाते हैं। हमारा बेडरूम कहाँ है, हमारा बेडरूम ये जो हमारा बेड है ये गैरेज है, ये बॉडी कार है ना, उसको वहां पार्क कर दो और करके अपने बेडरूम हमारा कहां पर है, बेडरूम हमारा सूक्ष्म बदन है, हमारा बेड कौन सा है, बाबा की गोद है ना, तो बाबा की गोद में जाके सो जाते हैं। तो ये जो चार नियम पक्के सच्चे ब्राह्मण माना, ये इसका प्रोसेस है, जो इन चार नियमों पे चलता है उनके अंदर फिर ये ज्ञान और योग बढ़ता जाता है। तो क्यों कौन सा, अमृत वेला, मुरली, तीसरा कर्मयोगी स्थिति, सारा दिन अटेंशन रखना, और चौथा सोने के पहले ऑडिट करना। उसमें तीन बातें आती हैं, पहले लेटर लिखो बाबा को, पत्र लिखो, फिर दूसरा चार्ट भरो, और तीसरा सोने के पहले मुरली पढ़ के फिर बाबा की याद में सो जाओ, बाबा गोद में सो जाओ। तो ये चार नियम है, और चार परहेज कौन कौन से हैं, चार परहेज या मर्यादाएं कौन सी हैं, पवित्रता, पहली डिग्री है, पहली जो इंपॉर्टेंट बात है पवित्रता। इसमें भी पहले कर्मणा में हमने विकार का त्याग किया, काम विकार का त्याग किया, फिर वाचा में भी, बोल भी हमारा कोई ऐसा ना हो जिसमें मतलब अपवित्र बोल किसी के लिए ना, किसी को मतलब खींचने वाला ना हो, फिर मन में विचार भी हमारे इतने शुद्ध हो जाए, फिर जब मन हमारा शुद्ध होता है संकल्प भी हमारे शुद्ध होते जाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारे सोपन भी शुद्ध होते जाएंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक पवित्रता, और पवित्रता खाली काम विकार नहीं, पवित्रता माना खाली क्रोध भी, क्रोध भी ना हो मेरा, मन में भी क्रोध ना हो किसी के प्रति, बोल में तो मतलब नहीं, और कर्म में भी ना हो। कई बार हम कर्म से क्या करते हैं, आंखें दिखाते हैं लोगों को ना, नहीं बच्चों को स्पेशली आंखें दिखाते हैं ना, तो आंखें भी ना किसी को दिखाए ना। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी क्रोध का अंश, लोभ का अंश, मोह का अंश, अहंकार का अंश ना, ठीक है। तो जितना जितना जितना, और फिर वैध संकल्प भी अपवित्रता है। वैध संकल्प माना ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन रेज करना, ये भी अपवित्रता है। ये बाबा का बनाया हुआ ड्रामा है या बना बनाया ड्रामा है, इसमें क्वेश्चन रेज करना ये भी अपवित्रता है, इसमें क्या क्यों कैसे करना यह भी अपवित्रता, ठीक है। तो जितना जितना पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी उतना उतना अमृत वेला अच्छा होगा। पवित्रता के आधार पे आज की मुरली में भी था, जितना जितना पवित्रता बढ़ेगी आत्मा की उतना उतना कशिश होगी बाबा की, बाबा चुंबक खींचेगा या ठहर नहीं सकेगी मन बुद्धि, एकदम मन बुद्धि ऊपर खींच जाएगी। हर कार्य करते, स्नान करते, खाना खाते, हर समय बाबा की याद लगी रहेगी, था ना लास्ट पेज पे, था ना लास्ट पेज, जो चौथी, जो लास्ट की तीसरी चौथी लाइन, मतलब स्नान करते भी आपको रहेगा बाबा बाबा, बस बाबा के साथ सूक्ष्म वतन की अनुभूति होती रहेगी, बाबा की गोद की अनुभूति होती रहेगी, परम धाम की अनुभूति होती रहेगी। तो पवित्रता के आधार पर ही अमृत वेला होता है, पवित्रता के आधार पर ही मुरली अंदर बैठेगी, और पवित्रता के आधार पर ही कर्मयोगी स्थिति बनेगी सारा दिन कार्य करते हुए। अगर बुद्धि में आप पवित्र है, आप रोज टेलीविजन देखते हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी देख लूं, वहां क्या हो रहा है, उसकी भी सुन लूं, फिर ना अमृत वेला होगा, ना मुरली होगी ढंग से, ना मुरली याद रहेगी, ना कर्मयोगी स्थिति, ना शाम को पोता में लिखा जाएगा, टाइम ही नहीं होगा। और जब कर्मयोग की स्थिति होगी फिर शाम को सोने के पहले सच्चाई से लेटर लिखना, वो भी तभी पॉसिबल होगा जब पवित्र होंगे। ठीक है, कई लोग कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, तो योग तब लगेगा ना जब हमारे पवित्रता माना सिर्फ बाबा, मेरी कॉन्शियसनेस में कौन बैठा है, बाबा बैठा है बस। पवित्रता माना, पवित्रता की हाईएस्ट डिग्री क्या है, मैं आत्मा हूं और ये सब आत्मा है बस, और हम सब एक बाप की संतान है, ये है पवित्रता। किसी की देह नजर ना आए, आत्मा भाई को देखे, आत्मा आत्मा भाई को देखे, भाई भाई की दृष्टि इतनी पक्की, ये है पवित्रता, हाईएस्ट डिग्री पवित्रता की। तो जब ये स्थिति होगी चलते फिरते उठते बैठते तो फिर मेरा अमृत लगेगा ना योग। अब बुद्धि में है ये, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकता, मेरे को तो वो खाने को नाश्ते में चाहिए, मैं तो आइसक्रीम चाहिए, मेरे को तो मिल्क, वो क्या बोलते हैं मिल्क ना, मैंगो शेक गर्मी के दिन है ना, मैंगो शेक तो जरूर पीना है मेरे को, आइस है ना, ये खाना है वो खाना, फिर तो पवित्रता गई है ना। बुद्धि में वही बैठा है, फिर बुद्धि में तो उससे योग लगेगा ना, मैंगो शेक से योग लगेगा है ना, और मैंगो शेक आपको प्राप्त होगा, आप मैंगो शेक को प्राप्त होंगे ना, नहीं ऐसा। तो पवित्रता माना पवित्रता, बस एक ही लगन, फिर शुद्ध सात्विक, दूसरा जो परहेज या मर्यादा है, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बनाया और बाबा की याद में सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन खाना। ठीक है, और शुद्ध सात्विक मतलब ये बहुत ध्यान से, बाबा की याद में खाना, बाबा की याद में बनाना और सातों गुणों को बढ़ाने वाला, सात्विक सात्विक माना सात गुणों को बढ़ाने वाला, फल सब्जी अंकुरित रोटी सब्जी दूध, बस उसमें बिस्किट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं है ना, आइसक्रीम नहीं है ना, पकोड़े नहीं, समोसे नहीं है ना, ये रासिक भोजन है, पराठा पकोड़ा समोसा पूरी हलवा है ना, ये क्या है, ये आलस्य पैदा करता है। आप खा लो हलवा पूरी फिर योग लगाते हैं, चलो योग में भट्टी में पे, वो योग भट्टी करते हैं, आप ऊपर जाओगे वो भोजन नीचे खींचेगा है ना। वो त्रिशंकु नहीं था एक, वो खाने की त्रिशंकु खानी थी ना, वो ऊपर मंत्रों से ऊपर चढ़ाता था और देता उसे नीचे फेंकते थे, नीचे जाओ तुम इसके लायक नहीं हो, नीचे जाओ नीचे जाओ, तो बीच में ना ऊपर जाएंगे नीचे, बीच में लटके रहेंगे ना। तो रासिक भोजन खाके हम कभी भी पावरफुल योग की अनुभूति नहीं कर सकते, आलस्य आएगा, अलबेलापन आएगा, नींद आएगी, बैठे बैठे योग करने जाएंगे, बस मैं आत्मा हूं ऐसे फील करेंगे। और योग नहीं लगेगा। ठीक है, तामसिक भोजन, ये जो नॉन वेज वगैरह तो खैर हम लोग खाते हैं, लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन है, इरिटेट करता है हमको ना, और फिर ये चाय कॉफी इरिटेट करती है, जैम्स ये जो अचार है ना, तरह तरह के अचार जैम्स खाते हैं ना, इवन आइसक्रीम्स है ना, चॉकलेट्स, ये सब के सब तापसिक भोजन है, उत्तेजित करते हैं ना, फिर इससे इरिटेशन चिड़चिड़ापन आएगा, चिंता होगी, गर्मी जल्दी 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 शरीर जल्दी गर्म हो जाएगा दिमाग, किसी ने जरा सा कुछ होगा हमारे हिसाब से गर्म हो जाएगा दिमाग। ठीक है, कोई कहे मैं चॉकलेट भी खाता रहूं, आइसक्रीम भी खाता रहूं और चाय भी पीता रहूं और योग भी लगाता रहूं, नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ जी, मैंगो शेक पीना जरूर पीना, क्यों नहीं पीना, मैंगो शेक पीना, मैंगो शेक तो ठीक है, फल सब्जी खाना ठीक है ना, हाँ जी, नहीं बहुत ज्यादा नहीं बताया, अगर वो तो फिर कैसा डिग्री का योगी बनना, आप देखो अगर 108 की माला में आना है कि 16108 या 9 लाख में आना है या कैसे, वो आपकी श्रद्धा है ना। रेट मैंने आपको रेट बताए हैं, रेट होते हैं ना, आपको कौन सी चीज चाहिए है ना भाई, जो महंगी चीज चाहिए तो महंगी चीज महंगे पैसे से मिलेगी ना, और जो सस्ती चाहिए तो चार आने की मिल जाएगी है ना, तो जैसे आपको चाहिए वैसे ले लो, मैं तो आपको रेट बता रहा हूँ, बाकी मैंने कुछ महंगा नहीं बताया, कुछ ज्यादा नहीं बताया है ना, मैं तो बाबा की मूल्यों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जितना शुद्ध सात्विक भोजन है ना, आसक्ति से नहीं खाना, आज ज्यादा अच्छा बना ज्यादा खा लूं है ना, नहीं, अब आपकी कार है, कार में इतना एक फिक्स अमाउंट ऑफ डीजल या पेट्रोल डालते हो ना, ये थोड़ी ना आज अच्छी कार वाला अच्छी पेट्रोल वाला है तो भाई इसमें ज्यादा आज पेट्रोल डाल दें गाड़ी में, 40 के भी 50 लीटर डाल दें, ऐसा होता है क्या, जितनी जरूरत है उतना भोजन शरीर को देना ना, जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीना है, बनेगा क्या उसका, अंत में तो बेकार एनर्जी मिलेगी, बाकी तो बेकार ही है। स्वाद सिर्फ यहीं तक है, उसके आगे स्वाद है क्या? इसके आगे स्वाद है क्या? स्वाद ही नहीं। और एक 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 फार्मूला है, जो जीभ को अच्छा लगता है पेट को अच्छा नहीं लगता है, जो पेट को अच्छा लगता है जीभ को अच्छा नहीं लगता है, है ना? तो ये तो मतलब सिंपल सी बात है ना। और अल्पकाल का सुख है ना, जितने भी अल्पकाल के सुख हैं वो सब किसके समान है? काग निष्ठा के समान है, बाद में जाके बहुत दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय क्या है, सारे दुनिया में दुख फैला हुआ है, यह अल्पकाल का सुख फैला हुआ है, इनसे मुक्ति पाओ। अगर बाबा का बनना है इनसे नष्ट मोहा हो जाओ, है ना? तो दूसरा ये परहेज है, मर्यादा है। इसलिए मैंने कहा दैवी गुण, अब जब ये कर लो ना, और फिर सत्संग, बाबा और मुरली, बस दो दो का संग, तीसरा किसी का संग नहीं चाहिए। बाकी सबके साथ व्यवहार रखना है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चों के साथ, क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है, उनसे हमारा क्या है, फर्ज है उनके प्रति। पिछले जन्मों का हिसाब किताब है हमारा उनके साथ लेने देने का। आप देखो, आप बैंक में आपने लोन लिया हो और आपको 20 साल तक किस्त भरनी है, और आप किस्त भिजवा रहे हो रेगुलर, 15 साल हो गए भिजवाते रेगुलर, मुरली आपके रेगुलर आप किस्त देके आते हो, ईएमआई देते हो। अब 15 साल के बाद 16वें साल आप दो किस्त नहीं दो, क्या होता है? हैं, घर में लेटर आ जाता है ना कि आपने नहीं दिया। ऐसे ही आप घर में, मान लो आपकी आपने शादी की हुई है ना, सभी प्रवृत्ति वाले हैं, आप 30 साल से अपने साथ पत्नी की बहुत सेवा कर रहे हो, पत्नी की या पति पत्नी, पत्नी पति की सेवा कर रही है, आप एक दिन नहीं करो, क्या होता है? क्या होता है बोलो, माताएं बताओ, एक दिन नहीं करो है? एकदम नोटिस आ जाएगा, नहीं नोटिस आएगा, क्योंकि आपने जमा कराई, किस्त क्यों नहीं जमा कराई आज की, है ना? और 20 साल के क्या कहेंगे, कुछ नहीं करते हमारे लिए, कुछ नहीं किया, है ना? एक दिन नहीं करोगे तो कहेंगे 20 साल में कुछ, 30 साल हमारे साथ कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं किया, एकदम गर्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी अभी कहां उधार पूरा, उधार पूरा कहां हुआ, पूरा ही नहीं हुआ, जो उधार लिया हुआ था पूरा तो किया ही नहीं अभी तक, है ना? तो इसलिए हक से करवाते हो ना, कंडीशन है, हमारे संबंधों में कंडीशन है। बच्चों के साथ भी ऐसा ही है, माँ बाप के साथ भी ऐसा ही है, दोस्तों के साथ भी ऐसा ही है, कंडीशनल है ही, भगवान के साथ अनकंडीशनल है। तुम 20 साल से भगवान को याद नहीं किया, आज 20 साल के बाद मतलब पड़ा, फिर भी भगवान बहुत प्यार से, बच्चे ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। अब तुम 20 साल के बाद कुछ ना पूछो और बाद में जाओ कहे भाग जाए यहां से, तेरा मेरा हमारा कोई संबंध नहीं है, नहीं? तो वो हमारा फर्ज है, इनके साथ हमारा फर्ज है, इनके साथ बंधन है, घर में हमारा संबंध नहीं, बंधन है, वो संबंध है, वहां से हम लेने का संबंध है, यहां देने का संबंध है, ठीक? उससे शांति प्यार खुशी मिलती है तो घर को दे सकते हो, हमें कोई देता नहीं है शांति प्यार खुशी, देता है क्या कोई, मुझे बताओ, घर में आपको देता है कोई शांति प्यार खुशी, सहन शक्ति देता है कोई आपको, देता है कोई सहन शक्ति घर में, शांति प्यार खुशी देता है? कोई नहीं देता है, सब लेने वाले हैं, सब सोचते हैं ये हम जो मर्जी करते हैं, पापा सहन करते हैं, मम्मी सहन करती रहे, नहीं शांत रहे, हम कुछ भी करें शांत रहे, हमसे प्यार करते रहे, हमें अच्छा अच्छा बना के खिलाते रहे, नहीं हम कितने बजे मर्जी आए चुप रहे, जरा बोले नहीं कुछ, पूछे नहीं क्यों तू देर से क्यों आया, ये देर से क्यों आई, नहीं वो हम लेते उससे देते सबको, है ना? तो ये हमें ध्यान रखना, सिर्फ बाबा और मुरली का संग, बाकी सबके साथ निभाना है, ठीक है? बाकी किसी और का संग नहीं करो, किसी मैगजीन में कुछ रामदेव बाबा और कौन कौन से बाबा आते हैं ना, बहुत सारे बाबा है ना, है ना? उनका वो ये थोड़ा सा नाक खींच ली, नाक में लंबा लंबा सांस खींच लिया, ये कुछ लगा के बैठते ना, लोग क्या करके बैठते हैं, मुझे तो लगाना भी नहीं आता है, ये मुद्रा लगा, कई लोग योग लगे बैठे यूं करके, अरे भाई तुम अगर तुम्हें चलते खाना बनाते बनाते ऐसे 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 कर खाना बनाओगे, कपड़े धोने ऐसे कर दोगे, गाड़ी ऐसे चलाओगे, चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते बाबा की याद रहनी चाहिए ना, कि नहीं मैं तो ये लगाया नहीं था, मेरा योग इसलिए लगा ही नहीं है ना, ऐसे हमें कोई मुद्रा की आवश्यकता है कि बाबा ने कब कहा मुद्रा लगा के बैठो, कभी कहा बाबा ने किसी मुरली में? तो बाबा और बाबा की मुरली, ये मुरली ही बाबा की श्रीमत है, ठीक है। तो ये संग, जब ये तीन बातें पक्की होंगी ना, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन और तीसरा सत्संग, सदा सत्य का संग, झूठ का संग नहीं, तो दैवी गुणों की धारणा होती जाएगी। ये दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती है, तब सत्यता हमारे जीवन में आती जाएगी, तब पवित्रता हमारे जीवन में आए, तब उसके बाद निर्भयता हमारे जीवन में आती जाएगी, ठीक है। तो मैं आप अभी दो गुण की मैंने बात की थी, तो फिर उसके चौथा है दैवी गुणों की धारणा। चौथी मर्यादा जो है वो है दैवी गुणों की धारणा, ये सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अभी मैं उस पर आता हूं, फिर दैवी गुणों की धारणा होगी, नहीं तो दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती। और दैवी गुणों की धारणा खुशबू है। तो इस चार मर्यादाओं के आधार पर हमारा अमृत वेला पावरफुल होता जाएगा, हमारी जल्दी जल्दी विक्रम विनाश होते जाएंगे, मुरली का स्वरूप बनते जाएंगे हम, कर्मयोगी जीवन बनता जाएगा, प्रैक्टिकल, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा कर्मयोगी जीवन रहेगा, और बाबा से एकदम सच्चे हो जाएंगे, हर बात बाबा से, हर बात चलते फिरते, फिर तो अमृत, फिर तो एक पोता मिल शाम को देते हैं ना हम लोग, फिर सारा टाइम बात यूं होती रहेगी, यूं हॉटलाइन, कहीं भी बाबा की कुछ आवश्यकता पड़ती है बाबा साथ है, यूं किया और कहते ना आंख से यूं किया बात हो गई, है ना, इशारों, आंखों से इशारे हो गए ना, बोलने की आवश्यकता नहीं है, इशारे इशारे में बात हो जाए, हर जगह जब चाहे जहां चाहे जितना समय चाहे बाबा से बात कर सकते हैं, बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं, तो फिर ये स्थिति बनेगी, ठीक है। तो ये चारों चीजों का बहुत ध्यान रखने का। अब हम आते हैं एक एक गुण के ऊपर। तो सत्यता, सत्यता समझिए, ये बार बार चलते, जब आप योग करने बैठते हो योग में भी ऐसी अनुभूति कर लिया करो, कई बार योग इसी बात पे कर लिया करो बैठ के, सत्यता, चले जाओ अपने अनादि पावन सत्य प्रधान स्वरूप में, परमधाम में, आदि पावन सत्य प्रधान स्वरूप में चले जाओ, फिर ये देखो कि मैं उस स्थिति में स्थित होके वहां पे कैसे संकल्प करता था, वहां पे कैसे बोल करता था, कैसे बोलता था, देवता कैसे बोलते हैं, देवता कैसे कर्म करते हैं, देवता कैसे संबंध संपर्क में आते हैं, देवता कैसे क्या स्वप्न देवताओं को आते हैं, किसी बुराई भाव गुण को संकल्प बोल व कर्म से टच करते हैं क्या, टच ही नहीं करते, इसलिए संपूर्ण वैष्णव कहलाते हैं। तो सत्यता, पवित्रता, एकदम शुद्ध फील करो, मैं आत्मा एकदम शुद्ध, बाबा मेरे साथ, जो एवर प्योर बाबा है, बाबा ने कहा एवर प्योर डायमंड बनना है, आज की मुरली में था ना, सच्चा हीरा बनना है, वैल्यूएबल हीरा बनना है, तो एकदम चमकता हुआ हीरा, एकदम शुद्धता, सारे बस रोम रोम में शुद्धता ही शुद्धता, अनुभव करो ये बैठे बैठे, बस योग का यही अनुभव करो। फिर निर्भयता, तीसरा दैवी गुण है निर्भयता। निर्भयता माने एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। इस वाली आंख में क्या, कौन सी आंख में शांति धाम, कौन सी आंख में सुख धाम, बोलो माताएं, बोलो बताओ, कौन सी आंख में सुख धाम, कौन सी आंख में शांति धाम, बहने बता सकती हैं जी, राइट, इन आंखों में शांति धाम नजर आएगा, इन आंखों से शांति धाम, इन आंखों से शांति धाम नजर आएगा क्या, सुख धाम नजर आएगा, बुद्धि है हमारी, बुद्धि है हमारी आंख और मन भी हमारी आंख है, तो बुद्धि में शांति धाम और मन में सुख धाम, बुद्धि में, बुद्धि हमारी आंख है ना, तो बुद्धि में क्या होना चाहिए, शांति धाम और मन में सुख धाम, हमारी स्मृति में वो स्मृतियां आ जाए, सत्यों की स्मृतियां, अपने पावन सत्व प्रधान स्वरूप की स्मृतियां है ना, मैं देवता हूं, लाइट का ताज है, रतन जड़ित ताज है, सरगुण संपन्न हूं, सोलह कला संपूर्ण हूं, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोत्तम, वृत्ति सबके प्रति आत्मिक हो जाए, भावना सबके प्रति शुभ हो जाए, संकल्प एकदम शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी सबके लिए, तो ये मन की आंख में ये बात रहे, और बुद्धि की, बुद्धि में क्या रहे हमेशा, बस बाबा और घर, बाबा और घर, बाबा और घर, तो ये है निर्भयता। अब बताओ जिसकी बुद्धि, जिसकी मन बुद्धि में ये भरा हो और जिसके मन में ये भरा हो, उसको डर लगेगा, उसको किसी बात का डर है क्या, कोई डर हो सकता है उसको, किसी को डर हो ही नहीं सकता, हो सकता है डर, किसी बात का, किसी बात का डर नहीं है, उसकी बुद्धि रहती परम धाम में है, उसकी, उसका मन रहता है इस सुख धाम में, स्वर्ग में, इसको किस बात का डर, दुख धाम में कुछ मर्जी होता रहे परवाह नहीं, फिर अंतर्मुखता। अंतर्मुखता माना एक सेकंड में देह से डिटैच, अंदर देखना है, अंदर देखना मैं कौन हूं। अंतर माना अंदर देखो, ये मन रूपी मुख को अंदर कर दो, मन रूपी मुख में क्या कर दो इसको, अंदर। अंदर माना मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, अशरीरी आत्मा हूं। देह देह अलग है, मैं अलग हूं, देह अलग है, देह से मैं अलग आत्मा। तो अंतर्मुखता का अर्थ है एक सेकंड में देह से डिटैच मैं अशरीरी आत्मा हूं, एक सेकंड में देह से डिटैच मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप अशरीरी आत्मा। इसको अनुभव करो, है ना। फिर एकांतवासी, एकांतवासी में ना एक के अंत में खो जाना। एक क्या है, किसके अंत में खोना है, शिव बाबा कौन है, ज्ञान सागर के अंत में खो जाना। ज्ञान सागर का अंत क्या है, ज्ञान सागर का अंत क्या बताओ, बुद्धि चलाओ ना, बुद्धि चलाते नहीं हो आप ना। ज्ञान सागर का अंत क्या है, ज्ञान का अंत क्या है, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। दूसरा अंत क्या है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान हूं। तो ये भी बिंदु वो भी बिंदु, ठीक है। और मेरे सर्व संबंध किसके साथ है, शिव बाबा के साथ है, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा, नौ संबंध मुख्य है हमारे बाबा के साथ। एक संबंध की अनुभूति में चले जाओ और फिर ड्रामा, इसे हम कहते हैं एबीसीडी, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, सीमाना कनेक्शन माना संबंध। तो एक एक संबंध की अनुभूति किया और डी फॉर ड्रामा। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। मेरा मीठा बाबा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है अच्छा होना। अभी देखो, जो हुआ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, किसने में धोखा दिया, गाली दी, तंग किया, है ना, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्योंकि जो मैंने गलत किया हुआ था मेरा हिसाब किताब चुकता हो गया, अच्छा हो गया। अब अच्छा क्या, अब अच्छा क्या हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं, अच्छा कैसे हो रहा है अभी, क्योंकि बाबा मिल गया है। और अच्छा क्या होने वाला है, सत्युग में जाने वाले हैं, कैसे महल होंगे, सबने अपना अपना महल के प्लॉट ले लिया, नहीं लिया, सत्युग में प्लॉट लिया, प्लॉट लिया कि नहीं लिया, कितना बड़ा प्लॉट लिया, हाँ जी, हरियाणा जितना लिया, अच्छा बहुत अच्छा, पूरी हरियाणा जितना ले लिया, कि सार जितना नहीं लिया, अच्छा ठीक, आप देख लो लगभग 10 किलोमीटर ना 10 किलोमीटर का प्लॉट तो सबका होगा, इतना तो मिनिमम साइज है हमारा, ठीक, कितना 10 किलोमीटर गुना 10 किलोमीटर कितना हो गया 100 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें उसमें अपना मकान महल भी बना लेना, उसमें खेत भी बना लेना, गार्डन भी बना लेना, माँ चार दीवारी नहीं खींचनी, मैं पूछा था चार दीवारी बनानी पड़ेगी, कहते हैं चार दीवारी बनानी ही होती है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि 100 किलोमीटर के आसपास आप फिर चार दीवारी खींचोगे, चार दीवारी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सबके इसे सब बेहद का लगता है, किसी को कितना मर्जी ले लो, कोई कोई आता है ना कितना मर्जी ले लो, तो वहां पर इतना बड़ा प्लॉट का ये मिनिमम साइज है प्लॉट का, ठीक है। अभी ये 26 मीटर का प्लॉट में सोचना, 60 मीटर का प्लॉट, ठीक है, दिल्ली में था ना 60 मीटर का प्लॉट, 90 मीटर का प्लॉट, 150 मीटर का प्लॉट, तो वहां साइज ऐसे होते हैं, किलोमीटर में साइज होते हैं ना, वहां ऐसा ऐसा साइज नहीं होता, छोटा छोटा साइज नहीं होते हैं। तो अच्छा ही अच्छा होना ना, 21 जना तो बीमारी नहीं होंगे, क्योंकि वहां धरती पर ऑक्सीजन कितनी होती है पता है आपको, कितनी होती है, 50% ऑक्सीजन होती है, अभी कितनी है 21% है ना, वहां धरती पर 50% ऑक्सीजन, मच्छर नहीं, मक्खी नहीं, काकरोच नहीं, छिपकले नहीं, सांप नहीं, कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं, फंगस नहीं, कुछ चीज खराब होती नहीं, फ्रिज की आवश्यकता वहां पे है क्या है? फ्रिज की आवश्यकता नहीं, एसी की आवश्यकता नहीं है ना, बिजली की आवश्यकता नहीं है ना, तो एकदम फर्स्ट क्लास। आप देखो अभी 25% पे हमारा रंग लाल है ना, क्या 50% क्या होता होगा, कंचन काया, एकदम सोने जैसी काया होगी ना, लाल रंग होगा ना एकदम से, कितना लाल होगा, एकदम सोने जैसा रंग होगा ना, क्या होगा, आप सोचो सही जरा कितना बढ़िया होगा। तो एकदम सत्युग में हीरे हीरे खरीदे आपने अपने लिए महल में लगाने के लिए, अभी लेने हैं सारा कुछ। एक्चुअली आपको अपना अपना यहीं बनाना है पड़ेगा, महल में कौन से कितने हीरे लगाने हैं, कितना सोना लगाना है, कौन सा हीरा लगाना है, कौन कौन से जवाहरात लगाने, अभी से खरीद अभी करनी पड़ेगी। नहीं, अभी जमा करते जाओ अपने अंदर, खरीदना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना, है जी। बाबा को टेका दिया तो उसकी कंडीशन थोड़ी बहुत कंडीशन तो है ना, वो तो करनी पड़ेगी ना पूरी। हाँ, तो वो जो है पूरा काम करना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा ना। तो ये हमारी स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। तो एकांतवास एक के अंत में खो गए, है ना। एक्चुअली मैं तो, मेरा तो कई बार क्या होता है, मैं ना ऐसे चलते फिरते 45 मिनट, मेरे पता ही लगता है मैं 45 मिनट बीत कहां गए मेरे, एकांतवासी में 45 मिनट बीत जाते हैं ना। फिर ज्ञान सागर के अंत में गए, वहां खो गए, उसका अंत भी बिंदु है ना, हर बात का अंत बिंदु है। और फिर उसके बाद पवित्रता के सागर का अंत, उसमें खो गए जाके, पवित्रता के सागर के अंत में खो गए। मैं शरीर आत्मा हूं और फिर पवित्रता के सागर के अंत में परम धाम में सीधे पहुंच गए, बिंदु बिंदु बस, है ना। मैं भी बिंदु, तू भी बिंदु, बस बिंदु ही बिंदु, है ना। और फिर शांति के सागर के अंत में खो गए, परम शांति, है ना, बस वहां जाके उसकी फीलिंग में खो गए। फिर थोड़ी देर प्यार के सागर के अंत में खो गए। फिर अतिंद्रिय सुख के सागर के अंत में खो गए, आनंद के सागर के अंत में खो गए। फिर आठ शक्तियां ना, एक शक्ति के अंत में जाके खो जाओ माना एब्जॉर्ब हो जाओ, मगन हो जाओ, होश ना रहे कहां चल रहे हो, कहां कौन है आसपास दुनिया में, कुछ पता नहीं, 45 मिनट खबर ही नहीं दुनिया में कहां गए, है ना। सैर कर रहे हो, सैर भी हो रही है और पता भी नहीं कहां क्या है, क्या ख्याल है, पसंद आया कि नहीं आया, है जी, सब गए हो मतलब यू कह, लोग कहते हैं योग लगाना मुश्किल है, कहां है योग लगाना मुश्किल है ना, बहुत मतलब इतना मजा आता है योग में। सीधी सीधी बात नहीं, आज के सब काम उल्टा चलता है ना, नहीं तो मैं तो योग शब्द आया तो मैं तो करता ही बस गयो, गयो माना गयो, अगर यहां रहो तो फिर मतलब गयो नहीं हुआ, ठीक है, योग नहीं लगा ना, मतलब मन बुद्धि से एकदम वहां चले जाओ, एकदम परमधाम में बाबा की गोद में चले गए, सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में चले गए। तो इसकी कितनी गहराई में खो जाओ एकांतवासी, एकांतवासी में कितनी देर जा सकते हो, एक गुण की है ना, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, जो ज्ञान सागर के अंत में गए ऊपर ऊपर उठते जाओगे, आपकी कॉन्शियसनेस धरती से ऊपर उठती जाएगी, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, रूहानी प्यार का सागर, अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, और शक्तियों में परखने की शक्ति का सागर। एक सेकंड में कैसी परिस्थितियों परख लो, ठीक क्या है, गलत क्या है, निर्णय करने की शक्ति का सागर, एक सेकंड में परख लो, निर्णय कर लिया, एक सेकंड में विस्तार को सार में ले आओ, विस्तार का सार क्या है, कितनी भी बड़ी बात हो सार क्या है, बिंदु, बस उसमें खो गए। समेटने की शक्ति का सागर, सब तैयार है, पैक्ड अप है, शरीर में छड़ी छोड़ने के लिए तैयार, प्लेन उड़ने के लिए तैयार, रॉकेट धरती को छोड़ने के लिए तैयार, ठीक है, शरीर रूपी धरती को छोड़ने के लिए तैयार, एकदम छोड़ने के लिए तैयार, समेटने की शक्ति का सागर। ऐसी स्थिति से चलते फिरते ऐसे फील करते रहो, सहन करने की शक्ति का सागर, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, शरीर छोड़ने की समय भी आ जाए, क्योंकि ऐसे शरीर में बीमारी हो, कैंसर फैल गया सब जगह, हार्ट अटैक आ गया, कुछ ना कितना मर्जी दर्द हो जाए, कोई मार भी दे ना, काट भी दे, है ना, बार बार उसकी अनुभूति रिहर्सल करते रहो, कितना बड़ा दुख हो जाए, कोई बात हो जाए, कितने कोई मर भी जाए, है ना, सहन करने की शक्ति का सागर। मकान, जिस मकान में रहते मकान टूट गया, भूकंप आ गया अचानक, मैं इसका बहुत अनुभव, मैं बहुत प्रैक्टिस करता रहता हूं कि जैसे मैं बैठा हूं और जिस मकान में हूं ना, वो मकान भी गिर गया, आसपास के सब लोग मर गए, इधर भी सब मकान, सब पत्थर सब खत्म हो गया ना, बाबा कहते हैं आंखों से दिखाई देता सब खत्म होने वाला है ना, ये देह भी खत्म हो गई है ना, अब सूक्ष्म शरीर बचा है और मैं आत्मा, बस लाइट की बॉडी और मैं बचा हूं, बस देख रहा हूं सबको आराम से, कोई परिस्थिति, कोई संभव, कोई असर नहीं किसी बात का। सामना करने की शक्ति का सागर, संभालने की शक्ति का सागर, सहयोग करने की शक्ति का सागर, सबकी मदद कर रहा हूं बस, कोई कैसा भी है ना। तो कितनी देर इसमें योग हो सकता है बताओ, प्रैक्टिकल करो कितना अच्छा योग होगा, फिर एकाग्रता, फिर एक एकाग्रता, एक ही बुद्धि में एक एक अग्र हो जाए। एक अग्र कौन? शिव बाबा। अब मेरी बुद्धि में कौन है, कौन गया? मन बुद्धि में सिर्फ शिव बाबा नंबर वन हो गया, एक नामी हो गए। फिर उसके बाद एकाग्रता का एक नामी, अब सिर्फ एक, कुछ भी हो वो ही याद आए। सिर में दर्द हो रहा है, शिव बाबा याद आए। हार्ट में दर्द हो रहा है, शिव बाबा याद आए। कमर में दर्द हो रहा है, शिव बाबा। कुछ भी हो रहा हो चाहे, कोई प्रॉब्लम हो, शिव बाबा याद आए। डॉक्टर याद नहीं आए, मां याद नहीं आए, बाप याद नहीं आए, पत्नी याद नहीं आए, पति याद नहीं आए। सिर में दर्द हो रहा हो तो बाबा को, बाबा बाबा को इतनी अच्छी चंपी करनी आती है, बहुत बढ़िया है ना। कभी शिव बाबा से चंपी कराई आपने? किसने कराई? हाथ उठाओ। आपने कराई? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मालिश करता है ना, किरणों की मालिश करता है, एकदम एक सेकंड में ठीक कर देता है ना। कहीं दर्द हो रहा हो, कोई कुछ भी, कोई तकलीफ हो, कुछ भी, एनीथिंग, बहुत वंडरफुल उसकी मालिश है, बहुत वंडरफुल उसका इलाज होता है। कोई भी समस्या हो, भूख लगी हो ना आपको और खाने कुछ ना हो, सूक्ष्म में जाके चले जाओ, बाबा ये खिलाओ, बाबा खिला देता है। उसके पास सब तैयार है, रेडीमेड माल है ना, कुछ भी खिलाएगा और आपका पेट भर जाएगा। आपको फीलिंग इसलिए क्या, पेट भर के आ गया, खाने की आवश्यकता फील नहीं होगी, है ना। क्योंकि प्रैक्टिकली अंत में ऐसे होने वाला है, सब कुछ जहरीला हो जाएगा, है ना, कुछ कुछ खाने पीने को नहीं होगा अंत में। तो जिसको अनुभव सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ रहने का, खाने का, पीने का, बात करने का अनुभव होगा ना, वो ही व्यक्ति अंत में टिक सकेगा, वो ही पांचवी डोनर होगा, नहीं तो समस्या में उलझ के रह जाएगा ना। मेरे इसको ये नहीं मिला, मेरे इसको ये नहीं मिला, मुझे खाने को नहीं मिल रहा, पानी जहरीला हो गया, ये सब ये हो गया, ऐसा हो गया, है ना। पानी की सप्लाई में लोग जहर डाल देंगे, है ना, तो क्या करोगे आप? पीने को पानी नहीं होगा, खाने को खाना नहीं होगा, क्या करोगे? जो सूक्ष्म वतन में रहने वाले होंगे ना, यहां पर रहते रहते इस वतन में रहते अव्यक्त वतनवासी होंगे, सूक्ष्म वतनवासी होंगे, उनको इस बात की अनुभव नहीं, अनुभूति नहीं, वो फरिश्ता बनकर सेवा करते रहेंगे। जो लोग शक्ति नहीं जिनके पास, आप अपने भक्तों की सेवा करते रहे, ठीक है। फिर एक नामी, फिर एक व्रता। एक व्रता माना बस बाबा, जो बाबा की श्रीमत है उस पे चलना, एक व्रता। फिर व्यर्थ से इकोनॉमी, व्यर्थ जरा भी घुसना पाए मन में, जरा भी क्या क्यों कैसे नहीं, जो कुछ हो रहा है जैसे हो रहा है एक्सेप्ट कर लो, सोचो मत। बाबा का ड्रामा है, बाबा मेरा मालिक है, बाबा मेरा साजन है, बस उसके साथ साफ करो, जो जो जैसा कहे वैसे, क्वेश्चन रेज मत करो, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, जैसे ज्यादा क्या वो शरीर जाएगा ना, जाने दो, क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि हरेक का हिसाब किताब उसके साथ है, कभी मत परिवार वाले मत सोचो कि मैं चला गया मेरे घर का क्या होगा, कोई कुछ नहीं, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, सब बहुत खुश होंगे, आराम से शांति से रहेंगे, है ना, ठीक है। एक दो दिन आखिरी वो दूसरे आंसू निकलेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे, चिंता नहीं करो, है ना, कोई टेंशन नहीं, और आप भी मस्त, वो भी मस्ती रहेंगे वाले, कभी चिंता मत करो, है ना। फिर उसके बाद एक रस स्थिति, बस एक रस, एक से ही सब रस लेने हैं। फिर सरलता, सरलता सरलता माने इजी नेचर, हर बात में ये नहीं कि मैं तो ये नहीं, मुझे ये चाहिए, ऐसी पैंट पहननी है, ऐसे ही कपड़े की पहननी है, ऐसी शर्ट चाहिए, ऐसा ही चाहिए चश्मा, ऐसा ही चाहिए, जो जैसा मिले, है ना, अपना खर्चा लिमिटेड करो, बहुत सरल रहो, जो मर्जी घर में सारे काम करने की, भाइयों को मैं स्पेशली कह रहा हूं, बर्तन धोने की आदत, खाना बनाने की आदत, सब प्रैक्टिस कर लो, है ना, अंत समय में सब काम करने आना चाहिए, है ना। आता जिन भाइयों को खाना बनाना आता, हाथ उठाओ नीचे करो, जो बनाते हैं वो हाथ उठाओ, अच्छी बात है, आना चाहिए, सारा काम आना चाहिए, अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये नहीं कि माताएं बना के दे तब नहीं, कभी भी सब कुछ करना है, चाय तो पीनी नहीं भाई। नींबू पानी पी सकते, ठीक है, अगर योग लगाना है तो, है ना, मगर अपनी अपनी स्थिति को बनाओ, जो जो खराब बातें बाबा ने कल भी मुरली में कहा ना, आज की मुरली में खामियां निकालते जाओ, चेक करते जाओ, अंदर जांच करो, मेरे अंदर क्या खामी है, किस बात पे मैं आधारित हूं, किसके बगैर मेरी स्थिति खराब होती है, चाय नहीं पीऊं तो मेरा सिर दर्द हो जाता, चाय नहीं पीऊं तो मेरा पेट साफ नहीं होता, ये कोई तरीका हुआ गया? जंगल में वो तुम चाय कहां से आएगी, वहां यहाँ को टी ब्रुकबॉन्ड वाला आपको देखे जाएगा चाय की, पानी तो कहीं मिल जाएगा, पानी पी लो तो चाय कहां जाएगी, है ना। आप बहुत सूक्ष्मतम में पी के आ जाना, सूक्ष्मतम मिलती नहीं चाय। मैं गया था एक बार, मैंने कहा बाबा चाय है क्या, तो क्या चाय तो वहां होती नहीं है ना, जो चीज वहां नहीं मिलती उसके लिए आदत तो मत डालो कम से कम ना, जो चीज वहां मिलती है वो भले यहां पियो उसको, ठीक है, प्रैक्टिस करो ना, ठीक है। तो ये अभ्यास करो तो सरल इजी नेचर, जहां कहा जहां भी मतलब बाबा से वायदा किया ना, जहां बिठाओगे, जो खिलाओगे, जैसे सुलाओगे, जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे, नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं, जैसे मर्जी रखो, अपने खर्चे इतने कट कर दो कि 2000 रुपए में गुजारा, अपना 1000 रुपए में गुजारा हो जाए, हमारा एक पैसा भी हम खर्च नहीं करते कभी भी, पैसा हमें पेंट यज्ञ से मिलती है ना, और खाना पीना यज्ञ से मिल जाता है, हमारा एक पैसे कभी खर्च नहीं होता, चश्मा भी यज्ञ से मिल गया है ना, हमारा कुछ भी नहीं खर्च होता है, तेल कंगा भी यज्ञ से मिल जाता है, तो खर्च तो हमारा कुछ भी नहीं होता है, कमाई कमाई है बस ना। इसलिए आप मतलब अपने खर्चे लिमिटेड कर दो, ये नहीं कि हमें वैसी वैसा कपड़ा पहने, जैसे सिंपल सिंपल कपड़ा पहनो, सिंपल 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 हर चीज सिंपल रखो, है ना, डाउन टू द बेसिक्स, खर्चे कम होंगे उसमें ईमानदारी ज्यादा अच्छी रहेगी, टेंशन दिमाग में नहीं आएगी, मुझे ऐसा चाहिए मुझे वैसा चाहिए मुझे, तो भारी पड़ेगा, है ना। आपको पता है सब ब्राह्मणों के अंदर 3 असुर रहते हैं, पता है सभी को, नहीं पता है? सभी ब्राह्मणों के मन में 3-3 असुर हैं, उन असुरों को मारने के बाद ही फरिश्ता बन सकते हो, कौन कौन से असुर है बताओ, सबसे पहला असुर है भस्मासुर, है ना, कौन सा असुर है, भस्मासुर, दूसरा है अकासुर, तीसरा है बकासुर, मन में रहते हैं ये 3 असुर। तो भस्मासुर क्या है, इच्छाएं कामनाएं, काम विकार का जो अंश है ना, ये कामनाएं इच्छाएं, तो ऐसी इच्छाएं हैं ऐसी कामनाएं हैं जो हमारी स्थिति को भस्म कर देती है, कभी स्थिति बनने नहीं देती है कि मेरी स्थिति अच्छी बन जाए, ये खा लूं चाय पी लूं फिर योग लगाऊं, ये कर लूं फिर मुरली जाने के पहले फिर चाय पी के फिर मुरली योग मुरली सुनने जाएंगे, नहीं तो वहां जाके नींद आएगी, मतलब इच्छाएं कामनाएं, थोड़ा ये काम ये हो जाए ना फिर हम करेंगे, बच्चे की शादी हो जाए ना फिर रोज मुरली में जाया करेंगे, ये हो जाए ना, ये धंधा ठीक से हो जाए ना, दुकान ठीक सेट हो जाए ना तब हम करेंगे, इच्छाएं कामनाएं ये इंसान को कभी स्थिति को बनने नहीं देंगे आपकी, तो इसको मार दो, इच्छा मात्र में विद्या बन जाओ, हर क्षण कुछ होना हो, कुछ भी हो रहा हो, घर में शादी हो रही हो, कोई मर गया हो, कुछ भी हुआ हो, मेरा अमृत वेला, मेरी मुरली, मेरा कर्मयोगी स्थिति, मेरा चार्ट चेकिंग कभी भंग ना हो, मेरी पवित्रता, मेरा शुद्धन शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा कभी खराब ना हो, इस 4 नियम 4 मर्यादा एकदम पक्की दृढ़ होनी चाहिए, दृढ़ता के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो सरलता, इतना सरल नेचर बन जाओ, नम्रता, नम्रता मतलब एकदम नम्र हम्बल, जरा भी दिखावा ना हो, जरा भी अहंकार ना हो, सबसे बहुत ही आदर सूचक शब्दों से बात करना, आदर से व्यवहार करना, ठीक सभी के साथ। फिर उदारता, उदारता मतलब बड़ी दिल, कोई गलती किए, कुछ ने गलती किसी गलती होगी उसको गाओ मत, फैलाओ मत, गलती कोई छुपा लो, हमारा ही परिवार मेरा भाई है ना, मेरी तो बहन ना, मैं अपनी बहन के जाके खराबी दूसरों को बताऊं, दुनिया में फैलाऊं क्या, अपने भाई बहन की तो खराबी छुपाई जाती है ना, समाई जाती है ना, कि फैलाई जाती है, नहीं उधार, किसी गलती को छुपा लो, फैलाओ मत। जब हम दूसरों को सोचते हैं कि हमारी गलती लोगों को दूसरों को ना बताएं, हम दूसरों की गलती को फैलाएं क्या, बताएं क्या, कभी नहीं। उदारता, मधुरता, हमेशा मीठा बोलो, कोई कैसा मर्जी बोले, कैसा मर्जी व्यवहार करे, मुझे मीठा बोलना है। धैर्यता, हर बात में पेशेंस रखो, किसी बात में जल्दीबाजी मत करो, सोच के बोल के, सोच के तोल के फिर बोलो, त्रिकालदर्शी बन के फिर बोलो, कभी भी गलत कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना, हमेशा मीठा बोलो, क्योंकि जो हम कड़वा कभी बोल देते हैं ना दूसरे को हमारे प्रति, वो अंदर उसके मन में ये बोल बैठ जाता है, हमारे प्रति वो इंप्रेशन उनके मन में बन जाता, सदा के लिए बन जाता है। तो बोल का घाव कभी खत्म नहीं होता है ना, तो बोल हमेशा मीठा होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल के साथ फिर मधुरता के बाद क्या आएगा, धैर्य रख, हमेशा पेशेंस रखो, गंभीर रहो, फालतू का हंसी मजाक, जोक सुनाना, जोक करना, दूसरे पर कटाक्ष करना कभी नहीं करो। कई बार सरदारों के ऊपर कटाक्ष करते हैं, करने की आवश्यकता है क्या? कोई लोग आप पे कटाक्ष करें अच्छा है क्या? किसी के बारे में कोई, ये भी फालतू की बातें हैं ना, हंसना बहलना, अंदर इतनी खुशी होनी चाहिए, नेचुरल खुशी होनी चाहिए कि आपको बाहर से कोई जोक सुनाए सुने आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गंभीरता, रमणीकता, ऐसे नहीं बहुत बोरिंग बन जाओ, रमणीक भी रहो, बैलेंस रखो, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। सहनशीलता, कई लोग सहन तो करते हैं तो अंदर अंदर गर्म होते रहते हैं, सहन करके ठंडे रहो। शीलता मतलब पवित्रता, जिसके अंदर सहन कर समा भी लो, ससत गर्म मत हो जाओ। दृढ़ता, जो हमारे चार नियम चार मर्यादा है उन पर दृढ़ रहो, ठीक है। देखो मेरा जब एमडी का एग्जाम था ना, मेरा एमडी मेडिसिन का एग्जाम था, उस दिन भी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम था, उस दिन भी मैं मुरली सुनने गया, और बाबा ने मेरी इतनी मदद की उस दिन चारों एग्जामिनर बड़े डिफिकल्ट थे, और बाबा जैसे उस पे जिस केस पे तीन लोग फेल हुए मेरे साथी, वही वाला केस मुझे भी मिला, किंतु बाबा मेरी बुद्धि में ऐसा आ गया, वो चारों एग्जामिनर मुझे कोई यहां से खींचे, वो चारों एग्जामिनर का एम ही था सबको फेल करना, किंतु ऐसे बाबा बुद्धि में डालता जाए, जो पूछते जाए उससे पहले मेरा आंसर तैयार, वो मैंने केस पढ़ा भी नहीं हुआ था ढंग से, पता नहीं कहां से बाबा बुद्धि में आ गया और बाबा साथ में बात आ गया। और सारे मैं तो, बल्कि जो लड़के 18-18 घंटे पढ़ते, मैं तो 18 घंटे पढ़ता नहीं था, मैं 2 घंटा रोज ही पढ़ता था सिर्फ एमडी मेडिसिन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पास किया मौलाना से, तो और मुझे उसमें एमडी मेडिसिन में गोल्ड मेडल मिला फिर, और मैं अकेला था जो शादीशुदा था, मेरा एक बच्चा भी था, उस बच्चे के साथ मैंने रह करके एक ही कमरे में युगल और बच्चा साथ में रहके हॉस्टल में रहके मैंने पढ़ाई की थी, आप सोच सकते हो, बाकी सब अकेले थे, और लोग सोचते थे ये तो जिम्मेवारी वाला व्यक्ति है, कहां पास होगा, है ना, किंतु मैं ही फिर फर्स्ट आया, किंतु मैंने कभी एक दिन मुरली मिस नहीं की एमडी करते हुए भी, हाँ जी, मैं वही मैं कह रहा हूँ, बाबा साथ था ना, कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, कभी मुरली मिस नहीं की, 8:30 मुझे हॉस्पिटल पहुंचना होता था, किंतु मैं युगल और बच्चा तीनों हम उसको रोज स्कूल जाना होता था छोटे बच्चे को, उसको स्कूल छोड़ के हम लोग मुरली सुनने जाते थे, संडे को साथ में ले जाते थे सेंटर पे छोटे बच्चे को, 3 साल का था तभी, तो तब हम लोग पर मुरली कभी मिस नहीं, एक दिन की गैरहाजिरी नहीं, दिल्ली में मां लेडी हार्डिंग पास में ना, औलाजाद पास में ही है, तो वहां पर थे। तो ये नियम जहां दृढ़ता है ना नियमों की, वहां बाबा साथ है, ठीक है। तो दृढ़ता चाहिए ना, बिना दृढ़ता के सफलता नहीं हो सकती, ठीक है। और इसके बाद लास्ट 7 बज गए, मैं आपको सर नाम ही बता देता हूं, तो सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, और उसके बाद संतुष्टता। मेरे भाग्य का मुझे मिला है, कभी किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, समय से पहले नहीं, भाग्य से ज्यादा नहीं, अपने आप से भी संतुष्ट हो, बाबा से भी संतुष्ट हो, परिवार, लौकिक परिवार से भी, अलौकिक परिवार से भी संतुष्ट हो। इसके लिए इस संतुष्ट का सबसे अच्छा साधन है स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्वयं को देखते रहो, आत्मा को देखते रहो और स्वयं का दर्शन करते रहो, परमात्मा का दर्शन करते रहो। पर चिंतन प्रदर्शन मत करो, पर चिंतन प्रदर्शन करने वाला कभी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, स्वचिंतन स्वदर्शन करने वाला सदा संतुष्ट रहता है, ठीक है। और फिर है हर्षित मुक्ता, सदा मुस्कुराते रहो, शरीर छोड़ने का समय है तो भी मुस्कुराते जाओ, रोके मत जाना, आदत डाल लो मुस्कुराने की, है हंसने की नहीं, मुस्कुराने की, नेचुरल मुस्कुराहट चेहरे पर, आंखों में, हर मुस्कुराते रहो हमेशा, ठीक है। और फिर स्वमान में लेकर सबको सम्मान दो, अपने स्वमान, मैं आत्मा हूं, परमात्मा ने मुझे चुना है, करोड़ों में से चुना है, इस स्थिति में स्थित रहकर सबको सम्मान दो, छोटे को भी सम्मान, बड़े को भी सम्मान। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, सब निमित्त, बस बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, जिस भी सुबह सेवा दी, घर में दी है चाहे बाहर दी है, निमित्त हूं। करावनहार वो है, करावनहार वो है, करणहार मैं हूं। निर्माण, निरहंकारी, एकदम एकदम निर्हंकारी, और हमेशा अच्छा अच्छा करो, बुरा मत करो, निर्माण, कंस्ट्रक्शन करो, डिस्ट्रक्शन मत करो। निर्माण के दो अर्थ हैं, निरहंकारी, निर्माण, निरहंकारी दूसरा निर्माण, निर्माण में ना कंस्ट्रक्टिव, और फिर निर्मल, निर्मल स्वभाव, किसी का भी मैल अपने मन में मत रखो, और फिर लास्ट में आज्ञाकारी। आज्ञाकारी में ना बाबा की दो आज्ञाएं हैं, सदा पवित्र भव पहली आज्ञा, दूसरा निरंतर योगी भव, ये दो आज्ञाएं बाबा की है, इसको अंदर बसा लो। फिर वफादार, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ईमानदार, दिल में मेरा दिल, ये कौन सी, ये वाला दिल नहीं, इसमें तो चारों चम्बर खून भरा हुआ है ना, ये दिल नहीं, आत्मा का दिल, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, उसमें सिर्फ बाबा, सिर्फ बाबा। बाबा बाबा कौन, बाबा ने ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियों का सागर यहां हमेशा मेरे बैठा के रखो, वो मेरे यहां बैठा है, बस मेरे दिल में सिर्फ दिलाराम है, किस कोई देदारी मेरे दिल में नहीं है, अपनी देह भी नहीं, देह के संबंधी, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ कोई भी नहीं है, तो ईमानदारी है। उसकी डायरेक्शन ले लेके हर काम करो, जैसा वो कहे, क्योंकि तन मन धन सब उसको दे दिया, अब जैसा वो कहे उस तन को यूज करो ईमानदारी से, मन को कहता जैसे विचार कहता चलाओ वैसे विचार चलाओ, वैसी भावना वैसी वृत्ति रखो, उन्हीं उन्हीं फाइलों को इमर्ज करो, स्मृति को इमर्ज करो, और फिर जो स्थूल धन भी मिला है उसको भी बाबा की श्रीमत पे करो, लौकिक परिवार है उसको भी बाबा की श्रीमत, कभी भी जल्दीबाजी मत करो। मुझसे कोई पूछता है ना कभी क्या करूं पापा क्या करूं, या कोई हॉस्पिटल में मुझसे पूछते हैं सर हम क्या करें, ये प्रॉब्लम को मेरे सामने आती है, मैं कभी भी उनको तुरंत जवाब नहीं देता हूं, सुबह सुबह अमृत वेले बाबा से पूछता हूं, बाबा आप क्या कहते हो, क्या करूं मैं, क्या कहूं उनको, बाबा जैसे कहता है फिर उनको बता देता हूं, तुरंत जवाब नहीं देता हूं, मनमत पे जवाब नहीं चलते, मनमत, मनमत ईमानदारी नहीं है, परमत ईमानदारी नहीं, श्रीमत लेके हर काम में श्रीमत लो, बाबा की डायरेक्शन लो, तो वो है ईमानदारी, ठीक है। और फरमान बरदार लास्ट में, देह देह के बाबा का फरमान है, देह देह के सर्व संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, इनको बुद्धि से निकालो, बुद्धि से छोड़ो, फिर अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ के सिर्फ मुझे याद करो, दो तीन को याद करने को बाबा ने नहीं बोला है, सिर्फ मुझे याद करो, तो पाओ तो विक्रम विनाश होंगे, विक्रम माना जो भी आपके गलत काम किए वो सब रिकॉर्ड है यहां पर, वो सब विनाश हो जाएंगे, और फिर तुम क्या होगा, तुम क्या बन जाओगे, पावन सत्व प्रधान बन जाओगे, और जब पावन सत्व प्रधान बन जाओगे तब मुझसे मिलन बना सकोगे, समान समान का मिलन होता है, तब बाबा से रूढ़िहान कर सकेंगे, हर बात बाबा से कर सकेंगे, तो जितना फरमान बरदारी करते जाएंगे हम उतना बाबा से हमारी क्लियर मुलाकात होती रहेगी, हमेशा चलते फिरते उठते बैठते, तो इस तरह से दैवी गुणों के ये मुख्य में 26 दैवी गुण बताए आपको, ठीक है, तो है तो वैसे तो कितने 56 है ना, तो ऐसे एक के साथ बाकी सारे अपने आप ही आते जाएंगे, ओके। तो इसकी फाउंडेशन क्या हुई, चार नियम चार मर्यादा, तो इनका जितना पक्का करते जाओगे उतना दैवी गुण अपने आप जीवन में आते जाएंगे, और फिर प्रैक्टिकली हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी, उसके लिए दिल में सिर्फ दिलाराम होना चाहिए, कोई देदारी ना हो, जब इस तरह से पक्का करोगे तो दैवी गुणों का स्वरूप होकर सबको खुशबू ऑटोमेटिक आपकी चलते फिरते उठते बैठते मनसा सेवा होती रहेगी, लोगों को आपको देख के लोग बदल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, अच्छा अकासुर रह गया, अच्छा अकासुर भी रह गया, भस्मासुर तो मैंने बताया, अकासुर माना अक माना जहरीला, अक माना जहरीला, अक का फूल जहरीला होता है ना, तो अक माना जहरीला, तो जहरीला सोचना, जहरीला देखना, जहरीला बोलना, जहरीला खाना, जहरीला सुनना, जहरीला कर्म करना, दूसरों मत दूसरों को दुख देने वाला कोई भी ऐसा, इस अकासुर को मार दो, मुझे सबको सुख देना है, मैं सुखदेव हूं, सुखदेवी हूं, दुखदेव हूं क्या, दुखदेवी हूं क्या, सुखदेव, तो अकासुर को मार दो, ठीक है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे किसी का अहित नहीं कर सकते। बकासुर माना बक बक माना व्यर्थ, है ना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ खाना, कुछ नहीं खा, कुछ भूख नहीं लगी तो भी चिप्स, चलो चिप्स ही खा लें, कुछ कुछ और चीज खा लें, अरे क्या वो हम लगातार गाय हैं क्या, चरते रहेंगे ऐसे ही नहीं। तीन टाइम खाना खाना होता है, सुबह दोपहर शाम। एक बार खाना खाया मुंह में, उसके बाद तीन घंटे मुंह में कुछ मत डालो, ये नहीं कि कुछ कुछ भी डाल लिया, ऐसे नहीं करना होता ना, पचने तो दो उसको, है ना। खाली खाना जरूरी है क्या, खा के उसको पचाना भी जरूरी है ना, नहीं। तो इस तरह से मतलब व्यर्थ कुछ भी नहीं सोचो, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ खाना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ कर्म करना, ठीक है। तो बकासुर को भी मार, ठीक है। तो भस्मासुर, अकासुर, बकासुर को मारो, जो मन में बैठे हैं तीन राक्षस बड़े जबरदस्त, उनको मारो तो क्या बन जाओगे, फरिश्ता, क्योंकि ये तीन असुर हमको धरती से चिपकाए रखते हैं, धरती से उड़ने नहीं देते। तो तीनों को मारोगे तो क्या बन जाएंगे, फरिश्ता, दिव्य गुणधारी देवता बन जाएंगे। ओ शाम, चलिए एक मिनट बाबा को याद, ताली नहीं बजाओ, ताली कभी भट्टी में ताली बजाते हैं क्या, भट्टी में ताली कभी नहीं बजाते।
ओम शांति। भाई साहब की विशेषता है, इतनी गहरी बातें और इतने सरल तरीके से हम सभी को बताई, हंसते हंसते खेल खेल में हम सभी को योगी, फरिश्ता और दिव्य गुणधारी बना दिया। हम सब भाई साहब का एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।
सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है।
ABCD आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, जितना इसका बार बार मनन करते रहो, इसको अनुभव करते रहो, ABCD को, आपके संकल्प कम होते जाएंगे तो आप सूक्ष्म वेतन में पहुंच। चार से कम संकल्प होते हैं, ये दुनिया चार संकल्पों तक की है, यहां से यहां पे चार से लेकर 45 संकल्प तक दुनिया में चलते हैं, 45 से चार तक। जैसे चार पे पहुंचे ना, खाली ABCD रह गया। ABCD माना डी क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला अच्छा होने वाला है। तो ड्रामा कहां पर है, ड्रामा सिर्फ इस दुनिया में है, ऊपर सूक्ष्म वेतन में ड्रामा है क्या। जैसे तीन संकल्प रहे तो कहां पहुंच गए, ABC आत्मा बाबा कनेक्शन, आत्मा बाबा और बाप से हरे संबंध का अनुभव, तो कहां पहुंच गए, सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। और सिर्फ दो संकल्प रह गए तो कहां पहुंच गए, आत्मा और बाबा ए और बी, कहां पहुंच गए, मैं बाबा का बाबा, बाबा मेरा, तो बाबा की गोद में पहुंच गए। तो वो आनंद की स्थिति है, वो स्थिति आनंद की स्थिति है। और जब खाली बाबा रह गया, बाबा की याद में मगन हो गए, बिल्कुल सिर्फ बाबा है, बाबा ही बाबा है बस, और कुछ नहीं है, फिर क्या होगा, आता ना मुरली में बाबा 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 कहके बाबा की याद में मगन हो जाते हैं ना, तो परम धाम में पहुंच गए। फिर वहां संकल्प खत्म हो गए, मैं संकल्प, एक ही संकल्प है बाबा, और उसमें भी अब खो गए हो तो उसमें सारे जितने विकर्म है ना आपके, वो विनाश होने लगते हैं। ये ज्वालामुखी स्थिति है, एक संकल्प सिर्फ बाबा, हर बात में बाबा, हर चीज में बाबा, तो उसमें विक्रम विनाश, मतलब जो आपके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मेमोरीज है ना, अंदर रिकॉर्ड हुई है, हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज है, वो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो रोज का अभ्यास, तो चलते फिरते जितना ABCD में ना, मुरली जो है ABCD है, बाबा की मुरली में क्या है, बच्चे आप अपने को आत्मा समझ के बैठे हो, बाप याद है, बाप टीचर शत्रु तीनों रूप से याद करते हो, और सृष्टि का ड्रामा है नहीं, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है ना, बाकी सुदर्शन चक्रधारी हो तो यही तो एबीसीडी मूल्य है ना। बाबा रमणीक तरह से इन्हीं बातों को, चार बातों को फिर बार बार मुरली में एक्सप्लेन करते हैं, है ना। सागर है ना, बाबा सागर, सागर की लहरें अलग अलग ढंग से उछलती हैं, तो इस तरह से अभ्यास कर, ठीक है। और उससे फिर दैवी गुण निकलेंगे, उससे दैवी गुण बनेंगे। जब एक स्थिति बाबा के साथ होगा ना, उससे सरलता आएगी, नम्रता आएगी, उदारता आएगी, मधुरता आएगी, धैर्यता आएगी, तो स्थिति पावरफुल होती जाएगी, ठीक है। तो दैवी गुणों की धारणा आएगी, क्योंकि विक्रम है ना अवगुण, अंदर अवगुण भरे में, फिर दैवी गुण उससे बनेंगे। जब विक्रम विनाश होंगे तो दैवी गुण बनेंगे। ओके, ओम।